ॐ भद्रन्नो अभिवातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 69 नंबर का श्लोक है। आचार्य कहते हैं, यथैव मृडमय कुंभस तद्वत् देहो पिचिन्मयः आत्मानाम् अनात्म विभागोऽयम् मुधैव क्रियते अबुधैः। कहते हैं, यथैव मृणमय कुंभः, कुंभ माने गड़ा, और मृणमय मृण बोलते मिट्टी के लिए, घड़े को बहुत गौर से देखो तो मिट्टी के सिवाय कुछ है नहीं उसमें, और जब आप घड़ा पकड़ते हो तो मिट्टी आपकी पकड़ में अपने आप आ जाती है, मिट्टी को पकड़ने की कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन एहसास घड़े को पकड़ने का होता है, कभी मिट्टी को पकड़ने का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम जिसकी सत्ता स्वीकार करते हैं संबंध उसी से होता है। हमने नाम और रूप की सत्ता स्वीकार करके रखी है, इसलिए ग्रहण नाम रूप का ही होता है। अस्थि भाति प्रिय की सत्ता हमने स्वीकार नहीं करी, इसलिए ग्रहण होते हुए भी उसका ग्रहण नहीं होता। एक भागवत में दृष्टांत आता है, ब्रह्मा जी ने सब जब ग्वाल बालों को सब चुरा लिया तो भगवान ने कहा थोड़ा ब्रह्मा जी को भी चमत्कार दिखाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के बहुत करीब के व्यक्ति हैं, और जो बहुत करीब के व्यक्ति होते हैं ना उनको समझना बहुत कठिन होता है। ये आंखें हमेशा दूर की चीजों को देखने के आदी हैं, और जिनको देखती हैं उनको समझने की बहुत कोशिश करती हैं। शास्त्रों में लिखा, अति दूरात अति सामीप्यात, बहुत दूर हो वस्तु और यह बहुत समीप हो उसको पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा चलो इनके ऊपर थोड़ी कृपा करें थोड़ी सी, तो उन्होंने चोरी की तो चलो इनको चोरी रहने दो, कुछ नहीं करते, क्योंकि ऐसा है यदि मैं आपको दुखी करने के लिए गाली दे रहा हूं और आप दुखी नहीं होते तो गाली देके मैं दुखी हो जाता हूं, बड़ी मुसीबत की बात है। ये ब्रह्मा जी ने कृष्ण को परेशान करने के लिए ग्वाल बाल चुरा लिए थे और अपने पास छुपा के रखे, कृष्ण के पास में बल था, वो चाहते तो उन बछड़ों को उनसे छीन के ला सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। देखो जिसके साथ तुम रहते हो उसके अहंकार को सेटिस्फाई करना भी आपकी जिम्मेवारी है, और व्यवहार में जब अहंकार संतुष्ट होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक अजीब प्रकार की खुशी मिलती है, और व्यवहार में हर पल यदि आदमी का अहंकार टूटता रहे तो आदमी को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा विष्णु सहस्र नाम में लिखा है, अमानी मानदो हो, परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई क्रेडिट देता है। हम दूसरे का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जो परमात्मा के बहुत करीब होते हैं नारद जी ने एक सूत्र लिखा है, तस्मिन तज्जने भेदाभावात्, जो बहुत परमात्मा के करीब हो जाते हैं उनका स्वभाव और परमात्मा का स्वभाव कुछ एक जैसा हो जाता है। तस्मिन तज्जने भेदाभावात्, भेद मिटने लगते हैं भक्त और भगवान के बीच के। हनुमान जी महाराज जब सीता जी को ढूंढ के ले आए, आप पढ़िएगा कभी तुलसी रामायण, हनुमान जी ने कहा कि महाराज हम लोगों ने सीता जी को खोज लिया। हम लोगों ने किसने खोजा जरा बताओ, तो लेकिन उसको बोलना चाहिए था ना मैंने खोजा है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जो अपने कार्य का श्रेय दूसरे को देना जानता है लगभग वो परमात्मा के करीब पहुंच गया, और जो दूसरे का श्रेय लेना चाहता है वो समझ लो कि रावण के करीब पहुंच गया, कंस के करीब पहुंच गया। और आप दूसरे को अपने कार्य का श्रेय आप अपने बेटे को कब देते हो, जब कहीं बहुत गहराई से बेटे के अंदर आप अपने को देखते हो। आपको अपनी लड़की की शादी करनी होगी, माइयों से बात कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, भोजन अपने आप बनाती है और बोलती है मेरी लड़की ने बनाई, बड़ा अच्छा बनाया। अब बहू बनाएगी तो बोली मैंने बनाया। कहीं क्रेडिट देते हैं कहीं क्रेडिट लेते हैं, जहां क्रेडिट देते हैं वहां आत्मीयता अपने आप चली जाती है। उन्होंने कहा महाराज हमने सीता जी को खोज लिया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा काम किया। वहां रामायण की एक पंक्ति है बहुत अच्छी है, उलट पुलट लंका जारी। हनुमान जी ने भगवान से कहा महाराज ऐसा मत बोलो आप, हमने नहीं जलाई ये आपने जलवाई है। बोले क्यों? बोले यदि हमारी इच्छा पूरी होती तो मेरी तो इच्छा थी सीता जी को उठा के ले चलूं, लेकिन क्या करूं, नाटक में जो रोल मिला है उतना ही करना है। उससे आगे यदि तुमने एक कुछ भी एक कदम भी आगे किया तो नाटक का मजा ही खत्म हो जाएगा। फिर तो हर आदमी को जो कार्य मिला है उस कार्य में हर आदमी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जब हम मर्यादा पालन नहीं करते तब जीवन में दुख फलित होते हैं। इसलिए बोलते हैं यथैव मृडमय कुंभः, कुंभ बने घड़ा, मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। आप पकड़ते किसको हो? मिट्टी पकड़ में आती है क्योंकि मिट्टी के सिवाय कुछ है नहीं। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको दृष्टांत दे रहा था। भगवान ने ब्रह्मा जी ने चुराया तो भाई आप चोरी करो किसी चीज की, कुछ दिन आपके पास रहे तो मजा आए ना, और दो मिनट में पुलिस वाला छीन के ले जाए तो क्या मजा, वो फिर तो सजा हो गई हो। तो भगवान ने क्या किया, उन बालों को ब्रह्मा जी के पास रहने दिया और अपने आप ही ग्वाल बाल बन गए। वहां तो भागवत यदि पढ़ो बड़ा मजा आता है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान ग्वाल बाल बने, भगवान बछड़े भी बन गए। प्रत्येक गाय का दूध कृष्ण पी रहे हैं, क्या बनके? गाय बछड़ा बनके। गाय का दूध कृष्ण पी रहे हैं बछड़ा बनके। जितनी माताएं हैं कृष्ण बनके, यशोदा का दूध उन्होंने पिया, लेकिन ग्वाल बाल बनकर के कृष्ण ही सब माताओं का दूध पी रहे हैं। कृष्ण ही सब बने हैं, कृष्ण को पिला रहे हैं, लेकिन किसी को कृष्ण के पिलाने का एहसास नहीं होता। कृष्ण को खिलाओ, कृष्ण को पिलाओ, और फिर भी कृष्ण को खिलाने और पिलाने का एहसास नहीं होता, इसी का नाम अज्ञान है। बस हमारे अंदर भी खाता वही है, इसलिए भोजन के पहले कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। यदि आप याद करते हैं उसको, क्योंकि खाने खाने वाला भी वही है, पचाने वाला भी वही है, लेकिन एहसास किसी और का होता है। यही बताते हैं। दूसरी पंक्ति इसकी जरा समझने लायक है, आत्मा अनात्म विभागोयम। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, आत्मा और अनात्मा का जो विभाग है, विभाग समझते हैं, बंटवारा, ये झूठा है। क्योंकि आत्मा के सिवाय कोई दूसरी चीज है ही नहीं, लेकिन खेल ऐसा विचित्र है। कभी मैंने आपको बताया था कि हर जर्रा चमकता है अनवरे इलाही से, हर सांस ये कहती है कि मैं हूं तो खुदा भी है। ये सांसें जो हमारी हैं, ये हमारे होने का एहसास नहीं, ये किसी और के होने का एहसास है। क्योंकि इनके लेने और देने में हमारा कोई प्रयास नहीं है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना सांसों का आना और जाना है। सांस आती और जाती हैं तो आपके सारे व्यवहार होते हैं। और आपको बड़ा गर्व होता है। कल रात को कोई मेरे को मिलने के लिए आया, उसका लड़का और उसका चाचा दोनों आए मेरे पास, बैठे थे थोड़ी देर तक। उसने कहा, महाराज जी थोड़ी सी आप एक मिनट के लिए मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। उसने फोन लगाया, उसके पिताजी ने बात किया, मेरे को नमस्कार किया, मेरे से कहा, महाराज जी मैं कल अथवा परसों आपसे मिलने आता हूं, अभी मैं कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ हूं। मैंने कहा ठीक है, कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा हूं, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, लेकिन यदि सांसें न चलें तो क्या होगा? फिर सबसे बड़ी जो घटना है उस घटना का हम ख्याल नहीं करते, क्योंकि जो चीजें फोकट में मिल जाती हैं ना, उनकी कीमत नहीं हुआ करती कभी। और क्या है, जैसे आप अपने बेटे को 10 करोड़ का फ्लैट दे देते हो, ना आपको देने का एहसास होता, ना सामने वाले को लेने का एहसास होता, क्योंकि आपकी उसके प्रति इतनी आत्मीयता बुद्धि है कि आपको लगता नहीं कि मैंने दिया, और उसको लगता नहीं कि मुझे मैंने लिया। और कभी यदि आपने बोला कि मैंने तेरे को दिया, तो वो बोलेगा कौन सा तुमने मेरे ऊपर कृपा कर दी, उपकार कर दिया। मैंने जैसा वो अपना नैतिक अधिकार समझता है, ऐसे ही परमात्मा ने हमें सांसें दी हैं, ये आंखें दी हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ममे बांसो जीव लोके जीव भूता। लेकिन एक बार यदि खरीद के कोई चीज लेनी पड़े 10 करोड़ का कर्जा चुकाते चुकाते जिंदगी चुक जाती है। ये एहसास व्यक्ति को होना चाहिए, इसलिए वो कहता है कि हर सांस ये कहती है कि मैं हूं तो वो भी है, उसके होने का एहसास है वो, इसलिए बोलती है आत्म अनात्म विभागोयम। ये आत्मा और अनात्मा का जो विभाग है मुदैव मुदा, मुद बोलते हैं अज्ञानी के लिए, मुग्ध मूढ़, ये सब अज्ञानी के लक्षण हैं, बेकार करते हैं, उसके सिवा कुछ है नहीं। कभी आपने पानी के ऊपर पानी देखा? नहीं देखा। बर्फ देखी, एक तरल है एक सघन है, पानी के ऊपर पानी तैरता है, एक पानी ऐसा है कि आंखों में कुछ घुस जाए तो आप ऐसा मारते हैं अंजली भर के पानी, कभी बर्फ मारो तो मालूम पड़े तुमको क्या है सब। तो ये कहते हैं आत्मा, उसके सिवाय यदि कोई दूसरी चीज नहीं है तो विभाग जो है ये अज्ञान कृत है, ऐसा बता दिया। चलो भागवत का थोड़ा दृष्टांत दिया है, जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तूनि कल्पिता। जाति व्यक्ति का जो विभाग है ये कल्पित है, झूठा है, ये वास्तविक नहीं है। इसलिए ये आत्म तत्व जो अब अज्ञान के कारण इस प्रकार की कल्पना होती है, ऐसा इन्होंने बताया। आगे देख लीजिए 70 नंबर का श्लोक है, सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतस्त्वेन सुक्तिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तदात्मता। अब एक बात बता रहे हैं, सर्पत्वेन यथा रज्जु, मैंने रज्जु मैंने अधिष्ठान, सीधी बात है ना, जैसे मैं है, आप यदि वेदांत की भाषा में समझें, जैसे मैं को तुमने कर्ता रूप से कल्पित कर दिया, मैं को भोक्ता रूप से कल्पित कर दिया, ये कल्पना हो गई किसमें, मैं में। जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना होती है, ऐसे ही मैं में कर्ता और भोक्ता की कल्पना होती है। और मैंने कल बताया आपको कि कल्पना अभाव में नहीं होती, अज्ञान में होती है। मैं का जो अज्ञान है उसी में कर्ता भोक्तापन की कल्पना होती है। अच्छा, रजतत्वेन सुक्तिका, चलो विनिर्णीता विमूढ़े न, ये मूढ़ के द्वारा विनिर्णीत हो जाता है, विनिर्णित होता है, क्योंकि सत्य का निर्णय तो बहुत बुद्धिमान लोग करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। अष्टावक्र जो हैं वो किसके लड़के थे मालूम है आपको, एक कहोड़ नाम का ऋषि था, उद्दालक एक बहुत बड़े ऋषि हो गए आत्मज्ञानी, उनका एक लड़का था एक लड़की थी, लड़के का नाम श्वेत केतु था और लड़की का नाम सुजाता था। सुजाता की शादी उन्होंने कहोड़ नाम के ऋषि से की, उनका वो अंतेवासी था, शिष्य था, बहुत बुद्धिमान था वो, और उस सुजाता और कहोड़ से उत्पत्ति हुई किसकी, अष्टावक्र की। और उद्दालक की के घर में जो पुत्र पैदा हुआ वो लगभग अष्टावक्र के समकालीन है, श्वेत केतु। कहानी सुनी होगी आप लोग, तो यहां सुन सुन के बस बाहर की तरफ भी रस बह रहा है अभी सीध के। कहोड़ को एक जनक के दरबार में बहुत बड़ा पंडित था, उस पंडित का नाम था बंदी। वो कई पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था, अब उसकी शर्त यही थी जो शास्त्रार्थ में हारेंगे उसको पानी में डुबा देंगे। जब अष्टावक्र के पिता हार गए, उनको पानी में डुबा दिया। कुछ समय के बाद जब अष्टावक्र पैदा हुए और श्वेत केतु उनका मामा था, किसका? अष्टावक्र का मामा, समझते हैं? डबल मां, हाँ, मां तो कभी मार भी देती है, मामा जल्दी मारता नहीं है। तो अष्टावक्र और श्वेत केतु एक बार रास्ते पे चल रहे थे, बात चली दोनों में। नानक ने कहा, एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी। और झगड़ा हो गया तो फिर पूछो मत। बात किया आपस में तो अष्टावक्र ने कहा कि एक बार तो बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहिए। बंदी के शास्त्रार्थ की शर्त हुई, जो हारेगा उसको पानी में डुबा दिया जाएगा। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, जनक ने कहा देख लो आप, बड़ी शर्त है ये, शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, बंदी हार गया। अब शर्त तो मालूम है क्या है, पानी में डुबाने की। अष्टावक्र ने कहा आप हार गए हो, शर्त ये कहती है कि तुमको पानी में डुबा देना चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा कहती है तुम्हारे को पानी में नहीं डुबाना चाहिए, तुम्हारे को पानी में डुबा के हम विद्या का बहुत बड़ा अपमान करेंगे, ये ज्ञान को हम नष्ट कर देंगे। फिर वहां राज बंदी ने खोला, उसने कहा मैंने किसी ब्राह्मण को आज तक मारा नहीं है, मैं जिनको पानी में डुबाता था, मेरे पिता वरुण जो हैं वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस पुरी का नाम है विभावरी, उस पुरी में एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मणों की जरूरत होती है, मैं इनको वहां भेजता हूं, कोई मरा नहीं है। और कुछ समय के बाद वो सब आ गए, समझ नहीं पाता व्यक्ति अष्टावक्र की सोच कैसी है। आदमी जब बुद्धि से परिपक्व होता है वो उसके निर्णय से झलकता है, अपरिपक्व व्यक्ति केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है, और बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ बचाने के लिए अपने अहंकार को छोड़ देता है। कृष्ण को देखो ना, जरासंध से हारे तो भाग गए। देखो भागवत पढ़ते हो तो अलग है, लेकिन सत्य पढ़ना है तो महाभारत देखो थोड़ा सा। कृष्ण ने कहा यदि इससे लड़े इस समय तो पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा, और यदि सब नष्ट हो गया उस जीत का क्या करेंगे हम। आखिरकार महाराज युधिष्ठिर ने इतनी बड़ी जीत प्राप्त करी, और जश्न की जगह उनके जीवन में शोक आ गया। उस युद्ध में बलि किस किस की चढ़ी? कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण ने कहा भाग जाना ठीक है, अभी भाग गए, द्वारिका बस गई। तो कभी ये विचार करना चाहिए कि हम अपने अहंकार के कारण कभी कुछ उल्टा सुलटा तो नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र चीज है, इसलिए बोलते हैं, जरा समझ लीजिए थोड़ा, विमूडेन देहत्वेन, जो मूड व्यक्ति होता है वो देह को आत्मा समझ लेता है, आत्मा के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। एक बार ऐसा निश्चय हो गया, कहते हैं आप जो जो करहूं सो सो पूजा, जो करता हूं तुम्हारी पूजा ही है। कबीर कहते हैं जो मैं घूमता हूं ये परमात्मा वो तेरी परिक्रमा है। और हम तो परिक्रमा भी लगाते हैं तो भी घूमते हैं। एक माई हमसे कह रही थी कि महाराज मैं कहीं स्वामीनारायण मंदिर में जाती हूं, बड़ी लंबी परिक्रमा है, सुबह सुबह इतनी तेजी से घूमती हूं कि मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। मैंने कहा ये ठीक है, आदमी परिक्रमा भी करता है तो भी घूमने जैसा है, और कबीर कहते हैं मैं घूमता हूं तो भी परिक्रमा, क्योंकि मैं परमात्मा के चारों तरफ घूमता हूं, क्योंकि परमात्मा कोई जगह ऐसी है नहीं जहां वो न हो, इसलिए हर पल परिक्रमा ही होती है। बस परिक्रमा के सिवाय तो कुछ होता नहीं है। इसलिए बोलते हैं ये देह को आत्मत्व ने कल्पना कर दिया। अच्छा, ये तीन चार श्लोक एक जैसे ही हैं, पाठ करने से भी भाष्यकार का लिखा है तो कोई घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेन तंतवा विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तदात्मता। वो तो पृथ्वी जैसे घट रूप से है और तंतु जो हैं वो पट रूप से हैं, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन पहचानना बड़ा कठिन काम है। कल मैं इससे बात कर रहा था, गिरीश से बता रहे थे, एक बनारस के कारीगर के घर में जब धागा बनता है वो कारीगर के घर की स्थिति कैसी होती होगी? एक जगह बीड़ी का टुकड़ा पड़ा है, तू तो कभी महीने दो महीने में एक बार जाता है, हम 12 साल वहीं रहते हैं। एक जगह बीड़ी का टुकड़ा पड़ा है, एक जगह प्याज लहसुन का तड़का लग रहा है, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं नाक में मक्खी भिन भिना रही है, वो सूत का टुकड़ा, वो कपास जिसको बोने वाला किसान आत्महत्या करता है, और मैंने कल आपको बताया था वही कपड़ा बन करके जब कोई रैंप पे चलता है, आप कल्पना कर सकते हो कि ये विदर्भ में पैदा होने वाला कपास है, जिस कपास को बोने वाला किसान आत्महत्या करता है, सबसे गरीब है वो, और ये रैंप पे चलने वाला आदमी सबसे अमीर है। यही वो सूत है, लेकिन पहचानना बड़ा कठिन काम है। अजब परमात्मा की दुनिया है। आप विचार करो, एक खाद पानी आप डालते हैं उसी से गुलाब का फूल खिलता है। कभी हरिद्वार में जाओ आप, कितने फूल मिलते हैं, वृंदावन में जाओ, सबसे ज्यादा गुलाब के फूल आपको मिलते हैं पुष्कर में, ऐसी सुगंध है। वो खाद और गोबर से गुलाब की पत्तियां बनती हैं, और गुलाब के फूल बनते हैं, गुलाब के कांटे बनते हैं। यदि कांटे और पत्ते और फूलों को आपस में आप मिलाओ तो आप कल्पना नहीं कर सकते, ये तीनों एक ही चीज से बने हुए हैं। किससे बने हैं वो सब, किससे बने हैं, इसके ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उनको थोड़ी देर के लिए तोड़ करके रख दो, 15 दिन बाद पता लग जाएगा ये किससे बने हैं। जिससे बने थे 15 दिन बाद वही बन जाएंगे सब। यही है खेल सारा, सब ऐसी है। इसलिए बता रहे हैं, आगे भी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, भाष्यकार खाली दृष्टांत से समझा रहे हैं, क्योंकि ऐसा है। भाष्यकार ने एक शब्द लिखा है बहुत सुंदर, और भाष्यकार के बारे में आनंद गिरी जी महाराज ने लिखा है। भाष्यकार भगवान लिखते हैं, यथा मंत्राणाम जामित्रा नास्ति, आनंद गिरी ने लिखा है, जैसे जामित्रा बोलते हैं आलस्य के लिए, जैसे मंत्रों में आलस्य नहीं है, वो एक चीज को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, जामित्रा नास्ति, आलस्य नहीं है, बार बार समझाता है, और कभी लगता है समझ में आ गया, फिर कुछ समय के बाद लगता है समझ में कुछ नहीं आया। एक बहुत बड़े पंडित हो गए, उन्होंने कोई पुस्तक लिखी और अपने लड़के को पढ़ाई, तो उन्होंने कहा, बेटा समझ में आ गई आपको पुस्तक? उन्होंने कहा, हाँ आपकी कृपा से समझ में आ गई। उन्होंने कहा, एक बार और पढ़ ले थोड़ा सा, फिर दोबारा पढ़ाई, बोला समझ में आ गई? बोले, कहीं कहीं कुछ पूछना है। बोला, एक बार और पढ़ ले फिर, और पढ़ाई। तीसरी बार जब पढ़ाई, बोले, बेटा समझ में आ गई? बोले, अभी हर जगह पूछना है। बोले, अब तेरे को समझ में आ गई बात? जब तक आदमी अधिकारी नहीं होता ना, उसको लगता है वेदांत समझ में आ गया, बड़ा अच्छा है। जब समझ में आने लगता है तब तो ऐसा लगता है कि वास्तविक में कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि तब उसको जीवन में उतारना पड़ता है, और जब बात जीवन में उतारते हैं तब मुसीबतें सामने आती हैं। कहते हैं आचार्य, कनकम कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वैजलम, तरंगों के रूप में जल ही है, लेकिन जो जल प्यास बुझाने में समर्थ है, जब उसकी तरंगें भयंकर हो जाती हैं तो फिर क्या करते हैं? बड़ा जबरदस्त उसका रूप है। इसी प्रकार से कनक मैंने सोना, आभूषण आदि के रूप में, इसी प्रकार से ये आत्मा ही सब रूपों में, बस जैसे सोना सब रूप में है, जल सब रूपों में है, उसी प्रकार से आत्मा भी सब रूपों में, अधिष्ठान आत्मा है। इसलिए शास्त्रों में यही बताया कि सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो सबसे बड़ा धर्म है उस आत्म तत्व को जानना, और आत्म तत्व को जब जानता है फिर कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तब पता लगता है कि ये सब। अब मैंने कभी बताया, फिर जो तत्व को जो जानता है ना, वो कभी घाटे में नहीं रहता, और जो नाम रूप को जानता है वो हमेशा घाटा। अच्छा, आगे का श्लोक भी ऐसे ही है, पुरुषत्वेन यथास्थानो जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तदात्मता। जिस प्रकार से स्थाणु फूट में पुरुष का आभास होता है, और मरुमरीचिका में जल का आभास होता है, आभास का मतलब जहां जो नहीं है वहां वो दिख पड़े, उसी का नाम है आभास। है नहीं वहां, दिखता है। इसमें लिखा है, नीति का ही है, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाय प्रायेण विपत्ति समापन्न काले धियाम अपि पुंसा मलिना भवन्ति। सुवर्ण के मृग का जन्म नहीं हो सकता, ये राम जानते हैं। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तो भी उस मृग को देख के सीता के मन में लोभ आ गया। अच्छा, मैं भी पढ़ता रहा बहुत दिनों तक, मेरे को कहीं इसका सही सही समाधान नहीं मिला। तो एक बार मैं कहीं चातुर्मास करने के लिए गया था, तो वहां एक महात्मा रहता था, बड़ा अच्छा महात्मा था। अच्छे महात्मा सब मर गए अभी। उसने मेरे को कहा, ऐसा करो तुम अध्यात्म रामायण सुनाओ। तो अब महात्मा की बात कैसे टाले, तो मैंने कहा चलो आपको अध्यात्म रामायण सुनाते हैं। लोग भी काफी लोग आते थे वहां पर, सुनाया। वहां हमने पढ़ा, वहां हमारे को वो शंका का समाधान मिल गया। वहां लिखा है माया की सीता को माया के मृग को देख करके लोभ हो गया। ये भगवती सीता, भगवती सती भगवान महादेव से प्रश्न कर रही हैं कि हे महाराज, स्वयं जगत जननी हैं, ब्रह्म विद्या की प्रतीक हैं, उनको कैसे वो मृग का भ्रम हो सकता है। तो वहां महादेव जी ने उत्तर दिया बड़ा सुंदर, असली सीता को तो रामचंद्र जी ने पहले ही छुपा दिया। अध्यात्म रामायण देखना आप, उसमें जवाब दिया कि वो माया की सीता को माया के मृग को देख करके लोग पैदा हो गए। वहां पर स्थिति ऐसी है, उस समय रामचंद्र जी में और माया की सीता में बड़ी कुछ गहरी बात चल रही है, बहुत गहरी बात चल रही है। लेकिन पति और पत्नी के बीच में बहुत गहरी बात चल रही हो और पत्नी कहीं सोने की तरफ देखने लग जाए तो उसकी दृष्टि पति से हट जाती है। वो बात कर रही थी रामचंद्र जी से और उसकी दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर, सोने के ऊपर। राम से दृष्टि हट गई और किस पे पड़ गई, राम की बात का कोई महत्व नहीं रहा, प्रेम का कोई महत्व नहीं रहा। और उन्होंने रामचंद्र से कहा कि ये मृग मुझे चाहिए। भागवत में कभी पढ़ो आप, एकादश स्कंद में भगवान सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते, वहां राम का स्मरण करते हैं। राम कितने दयालु हैं, लिखते हैं वहां पे, त्यक्त्वा सुरे स्वरे सितराज्य लक्ष्मी, अपने लिए तो उन्होंने ऐसी लक्ष्मी का त्याग कर दिया जिस लक्ष्मी की चाहत इंद्र के अंदर भी है। त्यक्त्वा सुरे स्वरे, सुरेश्वर कौन है, सुर मैंने इंद्र और उनका ही स्वर इंद्र, इप्सित, इसके इप्सित का अर्थ होता है संस्कृत में चाहत। देवराज इंद्र की भी चाहत जिस सिंहासन की हो, ऐसा सिंहासन उन्होंने भरत के लिए ठुकरा दिया जो उनको स्वयं मिला था, लेकिन उनके भक्त ने उनसे झूठी चीज मांगी। क्या झूठी चीज? माया का मृग। हाँ, झूठी चीज मांगी, अपने लिए तो सच्ची चीज छोड़ दी, लेकिन भक्त के लिए वो झूठी चीज लाने के लिए भी उसके पीछे पड़ते हैं। ऐसा परमात्मा का स्वभाव है। तो हमारी दृष्टियां कब बदलती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है समझने की। इसीलिए बता रहे हैं, चलो, पुरुषत्वे यथास्थाणु जलत्वे न मरीचिका। ये जो माया की मृग की बात आ गई यहां पे, जल रूप से जैसे मरीचिका, मरीचिका मैंने वो रेती, रेती होगी, वो भासमान होती है, लेकिन उसके बारे में लिखा है वो आदमी की प्यास बुझाने का आश्वासन तो देती है, लेकिन कभी आदमी की प्यास नहीं बुझा सकती। हाँ, भर्तृहरि हरिजी महाराज ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो कहते हैं तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती। यदि आप 80 वर्ष के व्यक्ति का मन देखें और 20 वर्ष के आदमी का मन देखें, तो भोग की इच्छा दोनों में एक समान है। कबीर ने कहा, न माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसलिए बोलते हैं स्थाणु जलत्वेन, ये स्थाणु स्थाणु जलत्वेन मरीचिका, रेती भासती है जल के रूप में, और जैसे आप उसके पीछे दौड़ते हैं प्यास आपकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली। जीवन की एक मर्यादा है, आपके पास में अरबों खरबों कितना भी पैसा है, लेकिन एक समय के बाद आपको बात खत्म हो गई। अच्छा, ये हम इस चीज को स्वीकार भी कर लेते हैं, यदि कोई 90-92 वर्ष का 98 वर्ष का व्यक्ति मर जाए, हम लोग बोलते हैं अच्छा हो गया, बिचारे का दुख चला गया। उससे क्या फर्क पड़ता है 10 वर्ष पहले मर गया कि 10 वर्ष बाद मर गया, ये तो पुनर्जन्म की तैयारी हो गई। मरना तो उसी का सफल है, उपनिषद में लिखा है यह चेद वेदीथ अत सत्यमस्ति, नो चेद वेदीत महती विनष्टी, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ऐसी मौत हो कि दोबारा फिर कभी मरना न पड़े, और ऐसा जन्म हो कि दोबारा फिर कभी जन्म न हो। बार बार जन्म इसलिए होता है क्योंकि जो जन्म लेने का प्रयोजन था वो आपने सिद्ध नहीं किया, और बार बार मरना भी इसलिए पड़ता था, मरने का जो प्रयोजन था वो सिद्ध नहीं हुआ, उसको पाके मरना था, उसको पाए बगैर जो मरेगा वो बार बार मरेगा जब तक उसको पाए बगैर नहीं मरता। इसलिए आचार्य कहते हैं इसी प्रकार से तथा आत्मा, उसी प्रकार से ये आत्मा देहत्वेन कल्पिता है। अच्छा आगे बोलते हैं, गृह्यत्वेन काष्ठानि खड्गत्वेन लोहता विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तदात्मता। अब ये जो है यहां ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। गृह्यत्वेन काष्ठानि, काष्ठ काष्ठ माने लकड़ी, कभी आपने देखा होगा लकड़ी के घर बनते हैं, गृह्यत्वेन काष्ठानि, फिर उसमें काष्ठ बुद्धि नहीं रहती, बुद्धि हो जाती है घर वाली, होती है कि नहीं होती है, घर वाली बुद्धि हो जाती है। खड़गत्वेन लोहता, जैसे लोहा लोहे से आपने तलवार बना दी तो उसमें फिर लोहा वाली बुद्धि नहीं रहती, तलवार वाली बुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से ये आत्मदेव जो हैं, ये देह के रूप में जब कल्पित हो जाते हैं तो आत्मा वाली बुद्धि खत्म हो जाती है और देह वाली बुद्धि, इसलिए आचार्य का यहां पर कहने का मूल तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने अधिष्ठान की तरफ चलना चाहिए और जब अधिष्ठान की तरफ चलेगा तो अध्यस्त वस्तु के प्रति उसकी अनास्था अपने आप हो जाएगी, करना नहीं पड़ता। जब सपने में कोई चीज मिले, जागने के बाद उसका अभिमान नहीं होता, लेकिन उसके लिए जगना जरूरी। जैसे ही आप जगते हैं सपने की चीजों का अभिमान सब अपने आप खत्म हो जाता है, उसके पहले खत्म नहीं होता। लेकिन सत्य की तरफ प्रवृत्त होने के लिए कुछ न कुछ आपका पुण्य चाहिए। तुलसी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पापी आदमी कभी सत्संग सुन नहीं सकता, उसके जीवन में हर जगह के लिए उसके पास समय होगा लेकिन सत्संग के लिए उसके पास समय नहीं हो सकता है। सत्य से मिलना सत्य के अनुग्रह के बिना संभव नहीं है। सत्य का जब आप पे अनुग्रह होता है, देखो ना आप अपने आप किससे किससे मिलना चाहते हो, आप बोलो, आप अपने आप से तो खैर मिलेंगे अगले जन्म में, लेकिन आप अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपनी बहू से बहुत प्रेम से मिलना चाहते हैं जो आपके अपने होते हैं। अपनों को आपसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। जिसका कोई अपना ना हो उससे मिलने के लिए सबको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मोदी साहब की परेशानी यही है, व्यवहार बिना अपनों के नहीं चलता। यहां किसी को, किसी न किसी को आपको अपना बनाना पड़ता है। वेद के अंदर एक मंत्र आता है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वता, कहीं न कहीं आपको विश्वास रखना पड़ता है तभी व्यवहार चलते हैं। यदि आप सबको अविश्वास के भाव से देखोगे तो फिर जिंदगी चल नहीं सकती है कभी। भगवान को माया पे इतना विश्वास है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सारा काम उन्होंने उसको सौंपा है। वाचस्पति ने लिखा है, लेकिन सारा काम माया को सौंपा है, लेकिन अपनी सामर्थ्य में कमी नहीं है उसकी। आप समर्थ हैं लेकिन फिर भी आपको काम किसी को सौंपना है और किसी न किसी के प्रति आपको विश्वास करना है। ये प्रकरण पूरा हो गया, अब कल से जो है ना दूसरा प्रकरण प्रारंभ होगा, आगे की चर्चा कल।